ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा सुधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दिशामे सा पुराणो अर्क अधुनोदित। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप लोग सुअवसर दिए हरि कथा कहने और सुनने का। तो इस बार हम लोग बलि महाराज का जो चरित्र है उसके ऊपर विचार करेंगे। तो जब भी मैं कहीं पर भागवत कथा कहता हूँ तो श्रोता और वक्ता में संबंध होना बहुत जरूरी है। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो संबंध स्थापित करना जरूरी है और संबंध स्थापन के अंतर्गत हैं नीलमणि प्रभु ने इंट्रोडक्शन दिया कि जिसे हम सुनने जा रहे हैं थोड़ा स्वाभाविक है कि लोग जानना चाहते हैं। और एक यह है संबंध कई एक प्रकार के होते हैं। दूसरा संबंध है कि कथा में ही रहना यानी कथा को रिस्पॉन्ड करना। पहले जब पुराने जमाने में कथा होती थी तो जो कथा सुन रहा है और कथा कह रहा है उनके बीच में संबंध स्थापित होता था हुंकारी भर करके। हुंकारी जानते हैं ना। अभी नहीं करेंगे नहीं तो सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पहले लोग एडवांस थे अभी वो नहीं है। तो ये है संबंध। और कथा हरि कथा कान से और आंख से पी जाती है। चक्षु पीवती कर्ण पीवती हरि कथा अमृतम। हरि कथा को आंख और कान से पान किया जाता है यानी आंख खुला रहना चाहिए। कोई सो जाएगा तो नहीं पान करेगा उस समय कान भी काम नहीं करेगा। और दूसरा बात कि अविधेय कुछ करना तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के आइए कथा सुनने जब आएंगे तो ताकि आप लोग जो भी अच्छा लगे आप लिख लेना। कभी काम करेगा साल भर में रिफर करते रहना। अविधेय। और तीसरा है अंतिम लक्ष्य वह है प्रयोजन यानी भागवत जो कथा है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। भागवत का लक्ष्य ही है कृष्ण प्रेम। कृष्ण को बताना कृष्ण प्रेम को बताना है भागवत का लक्ष्य है। प्रेमापमर्थो महान है प्रेम। अर्थ मतलब उसका प्रयोजन। भागवत का प्रयोजन जो है वो है प्रेमापमर्थ। अर्थ जो है प्रयोजन जो है प्रेम है। तो प्रेम देता है भागवत और संसार में सबको प्रेम चाहिए। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है भागवत कथा सुनने से। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग नोटबुक जरूर लेकर के आना। जब भी मैं कथा कहता हूँ तो जैसे कि प्रभुपाद जी बताए थे उसके अनुसार ही इस कान में हम लोग कथा कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भागवत सप्ताह के विषय में वार्ता हुई थी और प्रभुपाद जी इसका अनुमोदन किए। जसोमती नंदन प्रभु पहले थे। लास्ट टाइम बताया था प्रभुपाद ने कहा था उनको कि आप कथा उचित रूप से करो। और इस्कान में तो प्रत्येक दिन कथा होती है, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रतिदिन। लेकिन 7 दिन तक एक प्रसंग लेकर के उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग प्रहलाद महाराज का चरित्र का प्रसंग लिए थे, इस बार बलि महाराज का। कथा से पहले मैं, कोई भी कार्य हो तो उसका, जैसे लोग बुक लिखते हैं तो उसमें उसका इंट्रोडक्शन कंटेंट्स लिख देते हैं, तो कंटेंट्स पता चलता है किताब में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि किताब है क्या। घर बनाते हैं तो उसका शिलान्यास करते हैं, उसका फाउंडेशन ले डाउन करते हैं। तो वैसे ही कथा का भी फाउंडेशन ले डाउन करना बहुत जरूरी है। और मैं चार पिलर तैयार करता हूँ, लास्ट टाइम चार पिलर की बात हुई थी, हाँ, चार स्तंभों का। तो ये चार स्तंभ जो हैं संक्षिप्त में आज मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो बलि महाराज कथा है 9 अध्यायों में है, तो 9 अध्यायों को 6 दिन में ख़त्म करना है। तो आज हम लोग प्रायः इन चारों स्तंभों को स्थापित करेंगे। प्रथम जो है वह है भागवत का प्रयोजन, दूसरा है भागवत का महात्म, तीसरा है वक्ता और श्रोता के गुण, और चौथा है भागवत का कंटेंट्स या विषय वस्तु। तो इन चारों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। एक ग्लास भी लाना चाहिए, मैं जानता हूँ कलयुग आ गया है, लेकिन लाना भी नहीं किए। तो भागवत का प्रयोजन क्यों पड़ा, भागवत का प्रयोजन क्यों, भागवत क्यों? तो जो मैं श्लोक पढ़ा, कृष्ण सुधाम उपगतो, जब भगवान अपने धाम चले गए इस धराधाम को छोड़ करके, तो वे अकेले नहीं गए, उनके साथ में धर्म ज्ञानादि भी सह, भगवान के साथ में ही ये सब आते हैं। ज्ञानादि भी सह का मतलब होता है कि भक्ति, भक्ति के पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, मुक्ति, सब कुछ एक तरह से चला गया भगवान के साथ में। तो कोई प्रश्न कर सकता है, भगवान चले गए उसके बाद क्या भौकुम क्रिएट हो गया था क्या, उसके बाद क्या हुआ, एक बाइक चले गए तो? नहीं, भगवान के जाने से पहले ही जन कल्याण के लिए इस धर्म की स्थापना की गई थी अलग अलग रूपों में। जैसे रामायण, वाल्मीकि जी रामावतार से पहले ही रामायण लिख चुके थे, वैसे ही ये महाभारत, भागवत इत्यादि जो है, इन सब का संरचना हुआ था। जैसे महाभारत, महाभारत की जो कथाएं हैं उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि का वर्णन है, तो व्यास देव इसका रचना कर चुके थे। और ऋषि महर्षि लोग चिंतित रहते हैं जन कल्याण के लिए, इसलिए वो व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जब भगवान चले गए, माता जी माला मत जप करो, सुनो कथा, दोनों का प्रयोजन एक ही है, सुनना। जप करने का भी काम मतलब है सुनना, और कथा का भी काम है सुनना, दो साथ एक चीज में नहीं होगा, मन वहां नहीं लगेगा। तो भागवत के साथ में धर्म, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग सब साथ में चले गए। और कलौ नष्ट दृशाम एष, जब देखे कि कलयुग दिशा भ्रष्ट हो चुका है, कलयुग में कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है सुख शांति के लिए, तो सुख शांति के लिए पुराणो अर्क अधुनोदित, अधुना उदित, अधुना मतलब आज, उदित मतलब उदित हुआ है, आया है। बड़ा सुंदर यहां पर प्रसंग बताया गया है, अर्क उदित, अर्क मतलब सूरज, जब अंधकार छा जाता है तो अंधकार को डिस्पेल करने के लिए, खत्म करने के लिए सूरज आते हैं। अंधकार सूर्य से खत्म होता है, सूर्य के प्रकाश से। वैसे ही भागवत को यहां पर पुराणों और सूर्य रूपी ये भागवत पुराण है, जो कि अधुना उदित, जो आज हम लोगों के पास प्राप्त है, उदित हुआ। तो ये भागवत से लोगों जन कल्याण में शांति, धर्म इत्यादि की प्राप्ति भागवत से हुई है। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यस्त्वन अयनं महत् तदिदं ग्राहयामासे सूतं आत्मवतांबरम। तो ये जो मैं चार स्तंभ याद किया, प्रिपेयर किया हूँ, तैयार किया हूँ, ये सब भागवत से ही हैं। भागवत के अलग अलग श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। ये भी जो श्लोक अभी मैं दोनों पढ़ा, ये दोनों भागवत के प्रथम स्कंद से हैं। तो कहते हैं भागवत का प्रयोजन में, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत कैसा पुराण है? ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम मतलब भगवान से संबंधित। अन्य जो पुराण है, जो 18 पुराण है, उसमें से 6 पुराण जो हैं वो तमोगुणी पुराण हैं, 6 पुराण रजोगुणी हैं और 6 पुराण सतगुणी है। लेकिन भागवत महापुराण है, इसे महापुराण कहा गया है। अन्य पुराण है लेकिन ये भागवत महापुराण है, क्योंकि ये 3 पुराण है, ये प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है और भगवान प्रकृति के 3 गुण से परे हैं। तो भक्तों को प्रकृति के 3 गुण से परे होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, नैस्त्रण गुणयान वेदा निस्तर गण भवार्जुना त्रैगुण विषयान वेदा। ये जो तीनों ये जो वेद हैं प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंधित हैं। नैस्त्रैगुण भवार्जुना, हे अर्जुन तुम्हें नैस्त्रैगुण्य होना पड़ेगा, 3 गुणों से परे हुआ। और 3 गुणों से परे होने के लिए जो साधन है वह है भागवत महापुराण। इसीलिए इसे कहा गया ब्रह्म संहितम। स्वयं व्यास देव जिन्होंने रचना किया, वो स्वयं व्यास देव का अवतार क्यों हुआ? अवतार का कारण बताया गया है कि माया मुग्ध जीव नाहीं स्वतः ज्ञान, जीवे रह कृपाए कृष्ण कैल वेद पुराण। माया मुग्ध जीव को अपने आप ज्ञान नहीं था और उन लोगों को ज्ञान देने के लिए भगवान आए व्यास देव के रूप में और उन्हें वेद पुराण का रचना किया। तो जब वे वेदों को 4 भाग में विभाजित किए, उपनिषद पुराण यहाँ तक कि महाभारत जिसको 5वां वेद कहा जाता है, इतिहासम पुराणम च पंचम वेद च उच्यते। इतिहास पुराण यानी महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, इस पर भी व्यास देव खुश नहीं थे। तब उनके गुरु जी नारद जी ने बताया कि आप जब स्वयं खुश नहीं हैं तो दूसरों को कैसे खुश कर सकते हो? आप आए हो सबको खुश करने के लिए, आप स्वयं खुश नहीं हो तो कैसे खुश कर? अपने कोई गरीब व्यक्ति है, दूसरों को धन कहाँ से दे सकता है? धन देने के लिए धनी होना जरूरी है, खुशी करने के लिए खुश होना जरूरी, खुश रहना जरूरी है। आपको स्वयं शांति नहीं है, दूसरों को शांति कैसे दे सकते हो? तब उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे ग्रंथ का रचना करो जो भगवान और वैष्णव के संबंधित हो। अमल पुराण का वे रचना के, वैष्णवानाम प्रियम यद वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णव को बहुत प्रिय है, तो वह है ब्रह्म संहितम। ये संहिता है लेकिन किसके संबंध में? ब्रह्म संहिता, भगवान के संबंध में। और इसमें उत्तम श्लोक चरितम, इसमें भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, तो उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। चरित्र का मतलब एक तो उनका कार्यकलाप और उनका जिनसे संबंध है उनका भी कार्यकलाप ये उत्तम चरित्र ही कहलाता है। तो बलि महाराज का कथा जो है यह भी उत्तम चरित्र है, क्योंकि इनका संबंध भगवान से है। किसी का भी संबंध भगवान से है तो उच्चतम चरित्र में आ जाता है। चकार चकार भगवान ऋषि, तो उत्तम श्लोक का चरित्र, और चकार का मतलब अन्य लोगों का, भगवान और भगवान के वंशज का, भगवान के भक्तों का, इसलिए यहाँ पर चकार शब्द आया हुआ है। च मतलब अन्य लोगों का भी, नहीं तो केवल उत्तम श्लोक चरितम से तो केवल भगवान का लीला हो जाएगा। तो भागवत में कोई कह सकता है कि भगवान का लीला ही नहीं है, ध्रुव महाराज का लीला, यहाँ तक कि नरक तक का वर्णन है, भगवान से क्या लेना जाए नरक का वर्णन। तो चकार कहने का मतलब भगवान, भगवान के वंशज, भगवान के भक्त, और यहाँ तक कि जो भगवान के भक्त नहीं हैं लेकिन भगवान के ही तो सब प्राणी है, मामे वंश जीवलोक जीव भूत सनातन, तो उन लोगों का कैसे कल्याण हो सके, उन लोगों के कल्याण प्रद जो बातें हैं वो ही भागवत में बताई गई है। बिल्कुल बिगिनिंग से ABCD से बताया गया है भागवत में कैसे किसी का कल्याण हो सकता है। वो जैसे हाथ पकड़ को चलाना सिखाता है वैसे भागवतम में सिखाया गया है, इसलिए यहां पर चकार शब्द कहा गया, जन कल्याण के लिए भी। भगवान ऋषि भगवान व्यास देव ने इसका रचना किया। ये भागवत क्या दे सकता है कहते हैं, निःश्रेयसाय लोकस्य, संसार में सब लोग चाहते हैं कल्याण, लेकिन दो प्रकार का कल्याण होता है, एक कहलाता है श्रेयस और एक कहलाता है प्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट तुरंत मिल जाए रिजल्ट, तुरंत इमीडिएट हैप्पीनेस, और श्रेयस का मतलब होता है अल्टीमेट हैप्पीनेस और अंततः हो प्राप्त हो। तो यहां पर निःश्रेयसाय कहा गया है, निःश्रेयसाय मतलब कि इस श्रेयस अल्टीमेट हैप्पीनेस का, अल्टीमेट हैप्पीनेस। नाउ अल्टीमेट हैप्पीनेस का अर्थ यहां पर देखा जाए तो यहां पर कहते हैं कुछ दिन काम करें तो अंत में मिलेगा, यही ना उसे कहते हैं कि अल्टीमेट, अल्टीमेटली वो प्राप्त होगा। लेकिन ये भागवत ऐसा है निश्चेष्टा कि जिस दिन शुरू करेंगे कथा सुनना उसी दिन से वो हैप्पीनेस प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसी दिन से जप का जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिद्ध होने के बाद मिलेगा। अन्य जितने भी चीज हैं जैसे योग है, तपस्या है, दान है इत्यादि, तो अंत में मिलता है। अब करते जाइए, यज्ञ कीजिए, इतना साल करेंगे तब तो परिणाम मिलेगा है। उसके बाद सर तपस्या, उसे यज्ञ कीजिए तो पूर्णाहुति पर आपको उसका फल मिलेगा। पूर्णाहुति के दिन जिस चीज के लिए यज्ञ कर रहे हैं पूर्णाहुति के दिन आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन ये भागवत कथा ऐसा है, हरि नाम ऐसा है, संकीर्तन यज्ञ ऐसा है कि वो फल उसी समय मिलना शुरू होता है जिस दिन आपने पेड़ लगाया। कितना अच्छा चीज है ना, निःश्रेयसाय, अर्डिनरी नहीं है, निःश्रेयसाय अत्यंतिक कल्याण देता है। लेकिन शुरू से ही जिस दिन सुनना करेंगे, सुनना शुरू करेंगे उसी दिन से, आज पेड़ लगाए आज ही फल मिलना शुरू कर, कौन 5 साल आम के पेड़ के लिए प्रतीक्षा करेगा, तुरंत मिलेगा, कितना अच्छा है। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्थ अयनम महत्, व्यासदेव को धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने इसका रचना किया। तद इदम ग्राह्यामास सूतम आत्मताम्बरम, इसी भागवत महापुराण को तम इदम, तम तद इदम तदुपरांत, इसको गुरु परंपरा से शिष्य परंपरा के अनुसार, जैसे सर्वप्रथम भागवत का कथा भगवान शिव कहे, उसके बाद चतुष कुमार सुने, नारद जी सुने, इस धराधाम पर क्या बिगिनिंग हिस्ट्री है कि शुरू में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहे थे, और जिसे चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं, और ऐसे परंपरा से आते गए आते गया। इस धराधाम पर प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के समक्ष कथा कहे, तदुपरांत श्रुत गोस्वामी कहे इस कलयुग में। तो इस प्रकार से एक प्रयोजन हुआ कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है इसके प्रयोजन के संबंध में। कालो व्यालो मुखो ग्रास त्रासो निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सुखदेव गोस्वामी इस भागवत कथा को कहे कलयुग में। इससे पहले कथा हुई है, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में ये कथा हुई है, अन्य लोग भी किए, लेकिन अन्य युगों में, कलयुग में जो शुरू हुआ वह शुरू हुआ सुखदेव गोस्वामी से। तो कहते कालो ब्यालो मुखो ग्रासो, कलयुग में जो जीव है वो काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होते जा रहा था। नारद जी देखे थे कि कैसे सब लोग काल के गाल में जा रहे हैं और बड़े दुखी हैं, बड़े त्रस्त थे। तो उन लोगों को त्रास, जो त्रस्त थे उसको त्रास निकालने के लिए, निर्णास हेतवे उस त्रास को मिटाने के लिए, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषित, इस भागवत महापुराण का अवतार हुआ। कलयुग में जीवों के कल्याणार्थ सुखदेव गोस्वामी इस भागवत महापुराण का प्रवचन किए। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में इसका प्रयोजन मैंने बताया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो सब कुछ उनके साथ चला गया, उनके जितने परिकर सब चले गए, कुछ भी नहीं था। तो जीव बड़े त्रस्त थे कलयुग में। तो जन कल्याण के लिए मोटा मोटी ये भागवत महापुराण का रचना हुआ है। तो जो व्यक्ति भी अपना कल्याण चाहता है, अत्यंतिक कल्याण चाहता है, उसे चाहिए भागवत कथा सुनना। अब भागवत कथा का महात्मा, पद्म पुराण में इसका महात्मा वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण के आधार पर संक्षिप्त में हम लोग भागवत महापुराण का, हरि बोल सुनो कृष्ण, बात करेंगे। ए भागवत है क्या? महात्म बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम महात्म सुनते हैं तो मन में जिज्ञासा बनती है उसको देखने के लिए, वहां पर जाने के लिए। जैसे वृंदावन का महात्मा, जब वृंदावन का हम महात्मा सुनते हैं तो उसका इच्छा होती है वृंदावन जाने का। और महात्मा का अर्थ क्या होता है कि किसी का गुणगान, बेसिकली महात्मा मतलब ग्लोरिफिकेशन किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का। तो ऐसे ही भागवत महात्मा, भागवत का ग्लोरिफिकेशन। भागवत है क्या? आज जुग जुग से लोग सुनते आ रहे हैं, इस कलयुग में लोग सुन रहे हैं, तो क्यों प्रयोजन हो गया? भागवत क्यों सुननी चाहिए? क्या महात्मा है? क्या इंपॉर्टेंस है कि भागवत हम सुने? इंपॉर्टेंस क्या है? तो बहुत प्रकार से इसके इंपॉर्टेंस हैं भागवत महापुराण के। तो कुछ श्लोक लेकर के हम लोग उस पर विचार करेंगे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवत यदा कीर्तयते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम्। महात्म्य यह है कि जहां पर भी भागवत कथा होती है वहां पर भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही निवास करते हैं, और जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पर 33 करोड़ देवता अपने आप हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण हैं, समस्त देवता लोग वहां पर विद्यमान हैं, तो ये सब सुख शांति के साधन हैं। क्योंकि हम लोग बाहर जाकर काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और हमारे परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। परिश्रम एक अंग है किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए। कर्मणा दैव नेत्रेण, एक तो अपना कर्म और दूसरा दैव नेत्र। दैव मतलब भगवान और जितने देवी देवता हैं उन लोगों का भी कृपा होना चाहिए, और जिसे भगवान का कृपा है उस पर समस्त देवी देवताओं कृपा अपने आप हो जाएगा। हम लोग जानते हैं किस प्रकार से भागवतम में नंद महाराज बतला रहे थे भगवान कृष्ण को कि कैसे जब इंद्र पूजा का सब व्यवस्था हुआ था तो भगवान पूछे कि बाबा ये किसके लिए व्यवस्था की जाती है इतना, तो ये बतलाए कि इंद्र की पूजा की जाती है, और इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से कृषि होती है, और कृषि से हम लोगों का जीवन यापन होता है। तो यह बात हम लोग भागवतम में सुने हैं, लेकिन भगवान वहां प्रतिपादित किए कि इंद्र का नहीं गिरिराज जी का पूजा होना चाहिए। इन भगवान ये कहना चाहते थे कि जब भगवान खुश रहेंगे तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे, अन्य जितने देवी देवता लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। तो जहां भगवान रहते हैं वहां समस्त देवी देवता लोग अपने आप रहते हैं। इसीलिए जहां पर शुद्ध भागवत कथा होती हो वहां पर कथा सुनने कोई बैठ जाए, मैं भागवत के आधार पर एक गारंटी कार्ड दे देता हूं, अपने आधार पर नहीं भागवत के आधार पर, कि जो व्यक्ति प्रेम से कथा सुनेगा 7 दिन तक उसके परिवार में कुछ भी अनहोनी नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन ध्यान से सुनना चाहिए, कोई बीमार नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी, बिजनेस खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटेड है यदि हम भागवत ध्यान से सुने तब। क्योंकि वहां भगवान रहते हैं और देवता लोग सब रहते हैं, तो वे लोग सब देखभाल करिए रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है, हमसे अच्छा तरह से कर सकते हैं। हमारा तो एक ही काम है, कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारा कर्म है और दैव नेत्र। जब कर्म करेंगे तब दैव नेत्र होगा, कर्म न करेंगे तो दैव नेत्र नहीं होगा, पहले कर्म करेंगे। लेकिन भागवत सुनने में बिना कर्म का दैव नेत्र हो जाएगा, यही अच्छा फायदा है। भागवत सुनेंगे तो लोग हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, श्याम कुंड प्रभु नो प्रॉब्लम, और कम हो जाएगा, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान वहां पर रहते हैं और समस्त देवता लोग रहते हैं। तो पता नहीं आगे के श्लोक में कहा गया है, एक असल में कह दिया गया कि कृष्ण वहां पर विराजमान, कृष्ण श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, भगवान वहां पर निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। जहां पर कृतयते श्रूयते, जहां कथा कही जाती है, जय श्री श्री गौ निताय की जय। और सुनी जाती है। फिर आगे एक स्पेशल बात सुत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद्भागवतम यत्र अश्लोक अश्लो अश्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लवी भी विराजते। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जहां कथा होता है, संपूर्ण भागवत का, यदि संपूर्ण भागवत न भी हो सके, अश्लोक अश्लोक अर्धम एवं च, एवं मतलब निश्चय ही, एक श्लोक हो चाहे आधा ही श्लोक क्यों ना हो, जैसे इस कान में हम लोग एक श्लोक लेकर के और वहां पर कथा कहते हैं, कहते यहां भागवत का पूरा कथा होता है 12 स्कंध का तो ठीक है, यदि वो भी न हो, अश्लोक अश्लोकम अर्ध एवं च, ये मतलब निश्चय ही वहां पर क्या होता है, तत्रापि भगवान कृष्णो बल्लवी भी विराजते, वहां पर भगवान कृष्ण बल्लवी यानी अपने प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के साथ में विराजमान रहते हैं। तो पहले तो देवताओं के साथ में भगवान विराजमान रहते हैं, और यहां पर कहा गया कि राधा रानी भी आ जाती है, राधा रानी के साथ में भगवान विराजमान रहते हैं। तो यह कोई कह सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जहां कथा होती है समस्त देवी देवता ही नहीं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधिका भी आकर के वो सुनते हैं, सबको अपना गुणगान अच्छा लगता है ना, गुणगान सबको अच्छा लगता है। और ये कहाँ से आया, ये जो अपना गुणगान सुनने का जो मन है, हम लोग अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं, तो डिजायर कहाँ से आया, यदि कृष्ण में न है तो हम में नहीं आ सकता है, हम में आया है क्योंकि कृष्ण में सुनने की इच्छा है। अब तकलीफ यही है कि जब कृष्ण अपना गुणगान सुनते हैं तो खुश होते हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग यदि अपना गुणगान सुनते हैं तो हमको भी अच्छा ही लगता है, खराब नहीं लगता है, लेकिन अहंकार पैदा कर देता है, और कृष्ण में अहंकार पैदा नहीं होता, ये अंतर इतना ही है और कुछ नहीं। गुणगान सुनना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन चूंकि अहंकार पैदा हो जाता है, महाभारत में तो यहां तक वर्णन किया गया है कि अपने मुंह से अपना, आजकल लोग तो सुनते भी नहीं, अपने मुंह से अपना बड़ाई करना शुरू करते हैं, पहले तो दूसरे लोग करते थे बड़ाई ना, आजकल बड़ाई करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो अपने मन से करना शुरू कर देते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, पेपर कराते हैं, क्या क्या करते हैं, खूब पैसा खर्चा करते हैं अपना गुणगान कराने के लिए। जो ऐसा करता है वह मृत्यु के समान है, अपने जस का अपने से वर्णन करना वह मृत्युवत है। तो जस का वर्णन अच्छा लगता है, इसी को आधार मान करके श्रीपाद जीव गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है गोपाल चंपू। गोपाल चंपू में क्या है, ये जो कुबेर के जो दोनों पुत्र हैं नलकुबर और मणियीर, जब उनकी मुक्ति हो गई, वे जा रहे थे भगवत धाम, तो भगवान से पूछे कि मैं हम लोग क्या करें, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम लोग जड़वत हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, लेकिन सौभाग्यवश नंद बाबा के आंगन में वे लोग, प्रजन बाबा के आंगन में वे लोग जन्म लिए थे, इस श्राप था। लेकिन जब मुक्ति हुई तो उन लोगों ने कहा कि श्राप अब शुरू हुआ, श्राप पहले शुरू नहीं था, भले हम पेड़ के रूप में थे, नारद जी की कृपा से उन लोगों की स्मृति बनी हुई थी, भले पेड़ के रूप में थे लेकिन स्मृति बनी हुई थी, कृष्ण को देख रहे थे, सुन रहे थे, तो कृष्ण के लीला को सुन रहे थे, तो वे उनका सौभाग्य था, वो वरदान था नारद जी का, नारद जी का कृपा था कि वे लोग कृष्ण लीला को सुन रहे थे, कृष्ण लीला में भाग ले रहे थे, लेकिन अब उनकी मुक्ति हो रही थी यानी कृष्ण को छोड़ करके अब जा रहे थे, तो श्राप सही में अब शुरू हुआ न कि पहले शुरू हुआ, तो इसलिए बड़े दुखी थे नलकुबर और मणग्रीव। तब भगवान उन लोगों को डायरेक्टली अपने धाम भेज दिए गोलोक धाम में, और कहे कि तुम लोग जा करके और इस भागवत का श्रवण कराना। तो वे लोग मधुकंठ और स्तिग्नकंठ नाम के दो सुत हुए, और गोलोक धाम में नित्य प्रतिदिन ये भौम वृंदावन का, यहाँ का इस वृंदावन का कथा सुनाते हैं, तो और वो 24 आवर सेवा करते हैं, रात में स्त्रियों के पास और माताओं के पास, और सुबह दिन में पुरुषों के बीच में एक कथा कहते रहते हैं, और भगवान सुनते हैं, कृष्ण वहीं बैठे हैं और सुन रहे हैं, नंद बाबा हैं, जसोदा मैया हैं, सब सुन रहे हैं, तो भगवान को अच्छा लगता है उनका गुणगान, तो भगवान वहां पर आनंद के साथ में बैठते हैं श्रीमती राधिका के साथ में। अन्य जगह भगवान खड़ा रहते हैं, मंदिरों में देखा जाता है भगवान दिन भर बेचारे खड़े रहते हैं, दर्शन देने के लिए, स्वागत करने के लिए, लेकिन जब कथा होती है तो भगवान बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। इसीलिए विराजते, विराजमान हो जाते हैं। विराजना मतलब अच्छा से आसन के साथ में बैठना, खड़ा होने को भी विराजित कहा जाता है, लेकिन विराजमान का अर्थ होता है बैठना, आसन ग्रहण करना। तो भगवान श्रीमती राधिका के साथ में वहां पर आसन ग्रहण करते हैं, यदि एक श्लोक हो, आधा श्लोक हो, जितना भी हो सके उतना भी। भारते मानवम जन्म प्राप्यम भागवतम नयहि श्रुतम पापम अपराधिनो आत्मघात तु वै कृतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यम अयि परिसेवितम पितुर्मातुश्च भार्यः कुलपक्ति सुतारितम। जो भी भारतवर्ष में जन्म लिया है, जो अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाए, उसे भारत कहते हैं। रथ मतलब जो लगा रहता है, और अभा मतलब प्रकाशित करने में, जो हमेशा प्रकाशित करने में लगा रहता है उसे भारत कहते हैं। तो ये भारत मतलब जो इंडिया का जो मैप है उतना ही नहीं, पहले भारत पूरा पृथ्वी लोक ही भारत था, और पृथ्वी लोक पर ही ये हरि कथा संभव है। स्वर्ग लोक में हरि कथा नहीं है, नरक में तो समय कहाँ है कथा सुनने का। तो पृथ्वी लोक ही एक लोक है जिसे भारत कहा जाता है। ये भारत बाद में नाम पड़ा, उसके पहले ब्रह्मवर्त था, और अंत शुरू शुरू में पृथ्वी लोक था। तो पृथ्वी लोक का ही नाम है भारत। भारते मानवम जन्म, तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म जिन्होंने प्राप्त किया है, यानी पृथ्वी लोक पर 84 लाख जीवनियों में जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। यदि इंडिया के मैप को ही भारत यदि माना जाए, तो कोई कह सकता है क्या मनुष्य केवल इंडिया में ही रहते हैं, अमेरिका में मनुष्य लोग नहीं रहते हैं, वो लोग कौन है? तो इसलिए प्रमाणित करता है जो भारत शब्द है वो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है, पूरे भूमंडल के लिए है। जो भी पृथ्वी पर जन्म लिया है, महाप्रभु के भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्म जार, जो पृथ्वी लोक पर मनुष्य जन्म ग्रहण किया है, वह उस जन्म की सार्थकता है हरि कथा सुनने से, और नहीं तो वह पापी व्यक्ति है, आत्मघाती है, जो कथा नहीं सुनता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण डेली करना चाहिए, नित्यम वही परिसेवित, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भागवत कथा सुनता है। कहते हैं पितु मातुश्च भार्या कुलपक्ति सुतारित, सुतारित तार देता है, उद्धार कर देता है। सु मतलब अच्छी तरह से उद्धार करता है, किन किन लोगों का? पितु पितृकुल का, मातु यानी माता के कुल का, मामा के घर, नाना के घर, उन लोगों का, भार्या और अपने पत्नी का भी, और पत्नी के पूर्वज का भी, इन सब कुल पक्ति सुतारित, इनके कुल खानदान का उद्धार कर देता है। तो इस प्रकार से भागवत के बहुत से महात्मा हैं, और भागवत कथा सुनने के भी बहुत महात्मा है, कथा सुनने के महात्मा है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है, नारद और भक्ति के संवाद में, जहाँ पर धुंधकारी की कथा कही जाती है, प्रायः सब लोग इसको जानते हैं धुंधकारी। तो मैं धुंधकारी कथा न कह कर करके दूसरा ही भागवत से ही इसको एक किया, क्योंकि अन्य जितने भी कथाकार होते हैं यहाँ पर भी वो शुरू करते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं धुंधकारी इत्यादि, लोग सुनकर थक जाते हैं, नया चाहिए सबको सुनना। तो ये भागवत वास्तव में इतना सुंदर है कि प्रत्येक दिन सुनते जाएं, एक श्लोक सुने, जो जितना सुनेगा, जितना आनंद भागवत कथा सुनने में है, यदि वास्तव में यदि भागवत कोई रसिक हो जाए, भागवत का भागवत उठा करके और केवल देखे पढ़े या श्लोकों का भी बार बार उच्चारण करें पाठ करें, बहुत आनंद आता है, क्योंकि यह श्लोक भगवान से संबंधित हैं, आनंद देते हैं। तो इस प्रकार से सुनने के बहुत से महात्मा हैं। सुनने से हृदय साफ होता है, सुनने से दिल साफ होता है। कान का कनेक्शन जो है वह दिल से है और ब्रेन से है। यदि कोई किसी व्यक्ति को कोई अच्छा बात कह देता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो गया, आपके बात से दिल खुश हो गया। ये जो हम प्रसंग लेने जा रहे हैं बलि महाराज का और बामन देव का, ये बात से ही सब कुछ शुरू हुआ है। बामन भगवान इतना अच्छा बात किए, इतना अच्छा बात किए कि बलि महाराज प्रसन्नचित हो गए, कहे कि हे बटू, आज पहला बार कोई व्यक्ति मेरा दिल जीत लिया है, मैं तुम्हारे बात से बहुत प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो बात से। तो इसीलिए हम लोगों को बात बोलने में, वर्ड चुनने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, स्पेशली भक्तों को भी। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि इसी जिह्वा से लोग पान भी खाते हैं और पनही भी खाते हैं। पान का मतलब होता है पान, जानते हैं ना, और पनही मतलब जूता है। लोग पान भी खाते हैं और ये उल्टा सुल्टा बोल दिए तो लोग चप्पल में मारना शुरू करेंगे। तो ये जिह्वा को बहुत संभाल कर रखना, बड़ा खतरनाक जिह्वा है, कोई हड्डी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी बोल देता है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से पूछा प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। जो साधु महात्मा हैं उनके बोलने की शैली क्या है, क्या बोलते हैं, एक तो शैली और एक वर्ड जो बोलते हैं, दोनों बहुत जरूरी है। यदि शैली अच्छा हो और वर्ड ठीक ना हो तो वो भी ठीक नहीं है, और कभी कभी वर्ड ठीक हो लेकिन बोलने की शैली ठीक नहीं है वो भी दिल को दुख पहुंचाता है, इसलिए बहुत जरूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जानते हैं कथा कहना लेकिन उनकी शैली जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो हालांकि शास्त्रों का बहुत ज्ञान है लेकिन शैली प्रॉपर ना होने से लोग को मन नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शैली बहुत अच्छा है बोलने का लेकिन कुछ ज्ञान नहीं है। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे हाई स्कूल में एक बीएससी मास्टर थे और एक एमएससी थे, तो एमएससी तो बहुत, लेकिन उनको पढ़ाने का जो ढंग था एमएससी का, वह भक्तों सॉरी लड़कों को समझ में नहीं आता था, लेकिन जो बीएससी ऐसे पढ़ाते थे कि लड़के उनके क्लास के लिए दौड़ते थे। तो शैली बहुत जरूरी है ये जानना। तो भागवत का जो कथा कहने का शैली या सुनने का, तो जब हम कोई कहता है भागवत इतना सुमधुर है, कोई कहता है तो दिल को टच करता है, हृदय को टच करता है, हृदय प्रफुल्लित होता है और फिर बुद्धि अपने आप आता है, मन संतुष्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई वाणी ऐसा कह दे कटु हो तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, हृदय दुखी हो जाता है उस व्यक्ति से, हम उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं वाणी से ही। तो इसलिए कथा का जो है उस श्रवण करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रयोजन है सुनना, ये है प्रयोजन कि सुने भागवत को। तो सब जगह वर्णन किया गया है सुनने से क्या क्या फायदा, जैसे प्रथम स्कंद में कहा गया है कि नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। जो नित्य प्रतिदिन भागवत का कथा सुनता है तो उसे भगवान के चरणों में नैष्टिकी भक्ति की प्राप्ति होती है कथा सुनने से। अन्यत्र वर्णन किया गया है, श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। ये पुण्य है कथा सुनना। हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुश्रुताम। हृदयंतस्थ, हृदय अंतस्थ यानी हृदय के अंदर जो अभद्राणी, जो अमंगल कामनाएं हैं, उसको बिल्कुल साफ कर देता है और उस व्यक्ति को संत बना देता है जो कथा सुनता है। अन्यत्र वर्णन किया गया है भगवान कपिल देव के द्वारा, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृदय करण रसायन कथा तज्जो षणादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। वहां पर से एक मैं ले रहा हूं कि संतों के मुख से यदि कथा सुनेंगे तब हमारे जितने भी दुख हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अन्यत्र वर्णन किया गया है माता कुंती के द्वारा, श्रोताम श्रवंति गायन्ति गणंत भिक्षण स स्मरन्ति वन्दन्ति तवेहितं जना सएव पश्यन्ति अचिरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कहती भव प्रवाहो, ये जो संसार है इसमें प्रवाह है, करंट है। किस चीज का करंट है? भव। भव मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, इसका प्रवाह है। तो यह प्रवाह जो है वह बंद हो जाता है यह कथा सुनने से। भव प्रवाह हो और परमम पदाम भुजम। प्रवाह तो नष्ट हो ही जाता है और परम पद की प्राप्ति होती है यानी भगवत धाम की प्राप्ति होती है ये भागवत सुनने से। इस संबंध में मैं उदाहरणार्थ एक कथानक में कहा करता हूं कि किस प्रकार से एक परिवार था और उस परिवार में सब लोग चोर थे। लास्ट टाइम मैं कहा था कथा? नहीं नहीं कहा था। ओके एनीवे, यहां भी होगा लेकिन इंडिया में ज्यादा है, फैमिली हेरिटेज है। कोई डॉक्टर है तो पूरा परिवार डॉक्टर ही होगा, परदादा दादा बाप बेटा सब डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टर का परिवार है। कोई यदि वकील का परिवार है तो पूरा परिवार वकील होगा। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो पूरा परिवार चार्टेड अकाउंटेंट। कोई टीचर है तो पूरा परिवार टीचर का। कोई आर्मी में है तो पूरा परिवार आर्मी का। और प्राउडली लोग कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो है, खानदान है हमारा आर्मी का है, देश की रक्षा के लिए हमने किया है। तो वैसे ही एक परिवार था, यह पूरा परिवार चोर का था। परदादा भी चोर, दादा भी चोर, बाप भी चोर, बेटा भी चोर, और सब चीज का डिग्री है। तो ये बच्चा पीएचडी कर कर आया था कैसे चोरी करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी तक नहीं था। तो एक दिन बाप सिखा दिया था क्या कहना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसे बात करते करते बाप ने दो बात पर जोर दिया था, कहा था कि देखो जब भी पुलिस पकड़ ले, पहले नंबर तो तुम हां मत कहीं बोलना, हमेशा ना बोलते जाना, सब चीज के लिए ना बोलना। और दूसरा बात कि जहां भी हरि कथा हो रही हो वहां भूल कर मत जाना, मंदिर में जाना लेकिन कथा हो रही वहां मत जाना। कि मंदिर में भगवान से मांगना पड़ता है ना कि भगवान जा रहा हूं उनका पॉकेट मारने या चोरी करने, पकड़ा न जाऊं, तो मंदिर में चले जाना लेकिन कथा जहां हो रही हो भूल करके मत जाना। तो बाप उस दिन कहीं बाहर गया था, बेटा चोरी करने निकला। अब पढ़ा लिखा था तो सोचा कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो वह राजा के यहां गया और रनिवास में गया जहां पर रानी का महल था, और वहां जा करके रानी का जितना भी कीमती गहना इत्यादि था सब सफाई कर लिया, सब चोरी कर लिया, और लेकर के वो आ रहा था। तो चोर लोग रात को चोरी करते हैं ना, आजकल चोर तो 24 आवर चोरी करते हैं ब्राइब के रूप में, लेकिन उन लोग बेचारे वो रात को चोर चोरी करते हैं। वही चोर, असली चोर वही है जो रात को चोरी करे, दिन में चोरी करने वाला चोर नहीं कहलाता है, वो नकली चोर लोग हैं। और रात में साहस जुटाना पड़ता है, दिन में साहस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एनीवे, तो चोरी कर लेकर के आ रहा था, तो कथा हो रही थी एक जगह पर, और साउंड सिस्टम लगा हुआ था, बड़ा पंडाल बना हुआ था, साउंड सिस्टम लगा हुआ था, सब लोग कथा सुन रहे थे। अब इसके बाप से बात हुई थी कि जहां पर कथा हो वहां मत जाना, तो ये भी पढ़ा लिखा था। और इसने पूछा कि मान लीजिए उस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं तो क्या करूंगा, तो बाप ने कहा कान में उंगली डाल लेना ताकि कुछ सुनाई नहीं पड़े। तो आ रहा था तो कान में उंगली डाल लिया था, बाप ने कहा था कान में उंगली डालना, वो कान में उंगली डाल लिया था, चोरी का सामान दबा कर रखा था, लेकर के आ रहा था। पंडाल के थोड़े ही दूर पर उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभ गया तो बेचारा परेशान, अब दर्द कर रहा है, तो सोचा कि अब कांटा निकाल लूं, तो बैठ करके वो कांटा निकालने लगा। उस समय महात्मा जी जब कथा कह रहे थे तो स्वर्ग लोक के देवी देवताओं का वर्णन कर रहे थे कि स्वर्ग लोक के देवी देवता कैसे होते हैं, बतला रहे थे कि स्वर्ग के देवी देवता होते हैं, उनका पैर भूमि को स्पर्श नहीं करता है, उनकी परछाई नहीं होती है, उनके आंखों का पलक नहीं गिरता है। ये तीन बात सुना, उतने में कांटा उसका निकल गया, फिर कान में उंगली डाला, चलते बना। जब सुबह हुआ, रानी स्नान स्नान की, अब श्रृंगार करने का समय आया, तो अपना खोलती है अलमीरा, तो वहां पर कुछ भी नहीं है, सब गया, तिजोरी से कुछ भी नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ, सब चोरी चला गया। अब हाहाकार मच गया, राजा अपने पुलिस डिपार्टमेंट सीआईडी डिपार्टमेंट को लगा दिए पता लगाओ। तो पता नहीं अमेरिका में है कि नहीं, लेकिन इंडिया में आप लोग देखे होंगे, आप लोग यदि पुलिस स्टेशन गए होंगे तो नामी नामी चोरों का नाम वहां पर होता है और फोटो भी। यहाँ भी अमेरिका में ऐसा है, मोस्ट वांटेड, मोस्ट वांटेड नहीं, जो हैं वांटेड मतलब पुलिस खोज रही है, जो पुलिस अभी खोज नहीं रही लेकिन पता है कि ये लोग हैं खतरनाक लोग, तो उनका नाम वहां पर और फोटो लगा रहता है। तो पुलिस के पास सूचना रहती है कि शहर में गांव में कौन खूंखार आदमी है। तो ये परिवार खानदान ही चोर का खानदान था, तो जब भी कभी चोरी वोरी हो तो जाकर के सीधे उसको पकड़ कर लेते सब लोगों को, कि पहले इन्हीं लोगों को। तो पुलिस वाले गए पकड़ कर लाए, तो घर में तो कोई था नहीं, वो तो बाप बाहर चला गया था, बेटा था, और बेटा को पकड़ करके लाए। तो पुलिस लोग तो सत्य, वो भी जानते हैं कि चोर पहले ना बोलेगा, कैसे चोर से उगलवाना, पुलिस वाले भी जानते हैं, थर्ड डिग्री का प्रयोग कर करके, मारपीट कर करके। तो इस बच्चे को खूब मार रहे थे, लेकिन ये पक्का पढ़ाई किया था, कभी हाँ बोल ही नहीं रहा था। तब क्या हुआ कि राजा को पता चला कि एक छोटा लड़का है जिसने चोरी किया है, तो राजा के सामने उसको लाया गया। राजा को दया आ गई, वो कहा कि देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों चोरी करूँगा, ये भले हमारा खानदान चोर खानदान हो जो भी आप लोग सोचे, लेकिन मैं क्यों चोरी करूँ, मैं चोरी नहीं किया हूँ। तो राजा ने सोचा कि और पता लगाना चाहिए, शायद ये चोरी ना किया हो। तो राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो, अभी बाद में पता लगाएंगे। तो राजा सोचा कि मार पीट करके काम नहीं चलेगा, ये पढ़ा लिखा लड़का, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो देखिए, पहले राजा लोग अपने राज में सीआईडी डिपार्टमेंट का ही एक विभाग है जिसे कहते हैं बहुरुपिया, बहुरुपिया जानते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बहुरुपिया को, बहुरुपिया जो रूप बदल सकता है, बहुत रूप धारण कर सकता है, और जो रूप धारण करेगा उसी रूप में हमेशा वो रह जाएगा, उसका हाव भाव चाल चलन है? जो भी अंग्रेजी मीनिंग तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुरुपिया, बहु रूप जो धारण करता है उसे बहुरुपिया कहते हैं। गांव में बहुरुपियों का खेल होता है, यू नो, हाथ हंसाते हैं लोगों को। तो राजा के राज में एक बहुरुपिया था। राजा बहुरुपिया को बुलाया और सब बात कहा। तो बहुरुपिया ने कहा, महाराज इसका चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा करके बताता। तो बहुरुपिया देवी का रूप धारण किया। एक्सपर्ट होते हैं, जो रूप धारण करेंगे एज इट इज। हम लोग कुछ बहुरुपिया का काम करेंगे, जैसे मान लीजिए नीलमणि प्रभु अपने पत्नी के पर्स से कुछ रुपया निकाल लिए 2 मिनट के लिए, केवल केवल मजाक करने के लिए। लेकिन जब पत्नी पूछेगी तो यदि बहुरुपिया होंगे तो ऐसा जवाब देंगे कि पत्नी को शंका हो जाएगी, भाई पैसा कहाँ चला गया। लेकिन चूंकि बहुरुपिया नहीं है तो बाद में हंसने लगते हैं, तो समझ गए कि मतलब कि इन्होंने ही लिया है, मतलब असली बहुरुपिया नहीं है ना। बहुरुपिया मतलब पक्का जो काम कर दे। चोर का काम क्या, चोर काम करेगा, साधु काम पक्का साधु एकदम शुद्ध भक्त के काम करेगा बहुरुपिया। जो भी रूप बनाए एज इट इज काम करेगा, उसके उसका हाव भाव शारीरिक देख देखने से भी शरीर से भी वैसा ही लगेगा। तो ये देवी का रूप धारण किया, तो पोशाक उशाक भी पहना देवी के समान, रूप बनाया बिल्कुल देवी के समान, चाल चलन हाव भाव, और जेल में आया और उस लड़का से मिला अकेला में। कहा कि पुत्र मैं तुम्हारा कुल देवी हूं, मैं जानती हूं कि तुम्हारे खानदान में सब लोग चोर रहे हैं, तुम्हारा परदादा दादा बाप सब चोर रहे हैं और तुम भी चोर हो, ये भी मैं जानती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा बाप घर में नहीं है, वो बाहर गया है, और तुम अपने जो चोरी सीखा है उसको प्रैक्टिस किया है, प्रथम बार प्रैक्टिस किया है। तो सब बात जब बतलाने लगी बहुरुपिया, और कहा कि देखिए मैं हर एक बार तुम्हारे पूर्वजों का रक्षा की हूं, आज भी आई हूं मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए, क्योंकि राजा जेल में रखा है, कुछ दिन के बाद तुम्हारी फांसी होने वाली है, तो मैं रक्षा करने आई हूं और तुम्हारा जरूर रक्षा करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं तुमसे, कितनी कम उम्र में बहुत बड़ा तूने हाथ मारा है, रनिवास में जाकर के और बहुत कीमती गहना वहना चोरी कर लिया। बेटा तू ऐसा कैसे कर लिया है? कैसे इससे बड़ा अच्छा काम तो कर लिया, कैसे कर लिया? तो इस चोर को भी विश्वास होने लगा था कि सही में देवी माँ है, आई है हमारी कुल देवी हमारा रक्षा करने के लिए। लेकिन जो जो बात बताया था, बहुरुपिया के पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है ना, सब बताया कि कैसे कैसे तुम्हारा बाप ने लास्ट चोरी कब किया था, सब बतला दिया, और ये भी कहा कि तुम्हारा बाप घर में नहीं है, तो सब बात सही होती जा रही थी। तो यह बतलाने ही वाला था कि कैसे मैंने चोरी किया, उतने में इसका दृष्टि पड़ गया उसके पैर पर। तो यह क्या देखता है कि इसका पैर जो है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है, फिर देखा उसका परछाई, तो उसका परछाई भी है, थोड़ा ऊपर देखा तो आंख का पलक भी गिर रहा था। तो ये सोचा कि वो कथा में महात्मा जी स्वर्ग के देवी देवता का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं उनका परछाई नहीं होता, इसका परछाई है, उनका पैर पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता है, इसका पैर तो पृथ्वी को स्पर्श भी कर रहा है, इसके पलकें भी गिर रही है, तो दोनों में सही कौन है? वो महात्मा सही है कि ये हमारी देवी माँ सही है? उसको डाउट हो गया। जब डाउट हुआ तो उसने सोचा कि देखिए महात्मा तो इससे तो हमारा कोई संबंध है नहीं, महात्मा हमको जानते नहीं है और मैं महात्मा को नहीं जानता हूं, महात्मा ने देखा भी नहीं कि मैं कथा सुन रहा हूं, तो वे तो ऐसे बोल रहे थे तो सही बात होंगे, ये जो तो हमारे सामने आकर के ये सब बातें कह रहे हैं देवी माँ, तो एक हमारे जो बात कहा मुझे मुझे जाने हुए और ये जान करके बात कह रहे हैं, इसीलिए उसके बात को ज्यादा उसने महत्व दिया और बड़ा सरल स्वभाव से कहा कि हे माता, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा रक्षा करने के लिए आए, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया है। बस अब देवी माँ गई राजा के पास, वह रुपया गया राजा के पास, कहा कि महाराज इस बच्चे को छोड़ दीजिए, इसने चोरी नहीं किया। तो राजा ने कहा तू कैसे कह सकते हो गारंटी के साथ? कहा हाँ महाराज बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, आपका सीआईडी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन जो है वो रहने दीजिए, लेकिन मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसने चोरी नहीं किया है। और राजा को उन्होंने बताया कि मैं कौन सा रूप धारण कर करके गया था, और इस रूप से कोई एस्केप होने का कोई सवाल नहीं है, तो महाराज इसको छोड़ दीजिए। तो राजा छुड़वा दिए। अभी बहुरुपिया अब आ रहा था अपने घर, सोच रहा था कि हमारा बाप कितना मूर्ख है। बाप कहता है कि जहां कथा होती हो वहां भूल कर मत जाना, कथा सुनने मत जाना। अरे मैं कल 2 मिनट सुना, 2 मिनट सुनने से मुझे फांसी से, फांसी पर चढ़ने वाला था, फांसी से मेरा छुटकारा मिल गया। यदि मैं पूरी जीवन कथा सुनूंगा तो हमारी संसार से मुक्ति हो जाएगी। और इस प्रकार से वो सब घर द्वार छोड़ करके बैरागी बन गया, साधु बन गया, साधु बन गया। तो एक कथा सुनने का महत्व है, 2 मिनट केवल सुना। तो अश्लोक अश्लोक अर्धम इव च, एक श्लोक हो या आधा थोड़ा भी यदि हो तो कल्याण करता है, सुनना चाहिए। तो यह है भागवत का प्रयोजन, अत्यंतिक कल्याण देता है। अब श्रोता और वक्ता के गुण पर हम लोग विचार करेंगे। तो पहले आप लोग वक्ता का गुण सुनना चाहेंगे कि श्रोता का? मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूं कि श्रोता का गुणगान करूं कि वक्ता का गुणगान करूं, तो इसीलिए मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं कि आप बताइए किसका गुणगान करना चाहिए। हैं? ठीक है, हाँ बात सही है, दूसरे के विषय में जानने से पहले अपने को जान लेना अच्छा होता है, नहीं तो अपने को नहीं जानेंगे दूसरे के विषय में जानने में लगे रहे। संसार का ही कमी है कि लोग दूसरे के विषय में जानना चाहते हैं, अपने विषय में कुछ नहीं जानना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं, जब दूसरे पर उंगली उठाते हैं भूल जाते हैं 3 उंगली अपने तरफ है, एक उंगली उठाते हैं 3 अपने तरफ है, इसलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, श्रोता के बहुत से गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। एक तो श्रोता का प्रथम गुण है कि उसमें सुनने की लालसा होनी चाहिए। लौलम एकम मूल्यम, लौल्यम लालच होनी चाहिए सुनने की, ये प्रथम गुण है श्रोता के। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आ रहे थे तो उन्होंने एक जलदूत पर एक पोयम लिखा, और उस पोयम में लिखा है भागवते कथा से तव अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। हे भगवान, आप और भागवत में कोई अंतर नहीं है, भागवत कथा से आपका अवतार होता है, भागवत कथा आपका अवतार कराता है, भागवते कथा से तो अवतार, लेकिन धीर हैया सुने जदि काने बार बार, धीर मतलब पेशेंटली। तो प्रथम गुण है वो लौल्यम, यानी लोभ लालच होना चाहिए कथा सुनने का, और दूसरा है पैशन, धौर्य, धौर्य के साथ में कथा सुनिए, धीरज धारण करके कथा सुननी चाहिए, अधीर होकर कथा नहीं, आए और बूम ऐसे नहीं, शांति से बैठ शरीर, क्योंकि शरीर का जो रक्त संचार है वो शांत हो जाए, जब रक्त संचार शांत होगा तो मन शांत होगा, जब हाई हाइपर टेंशन रहेगा तो कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, तो बॉडी को कूल डाउन करना पड़ेगा, मन को कूल डाउन करने का, धीरज के साथ में, धैर्य के साथ में, पेशेंटली कथा सुनो, धीर हैया सुने जदी काने बार बार। श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं प्रवर श्रोता और एक कहलाते हैं अवर श्रोता। प्रवर मतलब उत्तम प्रकार के श्रोता और मतलब अधम प्रकार के, लेकिन दोनों हैं श्रोता। तो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि जो प्रवर प्रकार के श्रोता हैं वो चार होते हैं और जो अवर प्रकार के श्रोता हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं। तो जो प्रवर श्रोता हैं उसमें से प्रथम जो है वह है चातक। चातक यानी पपीहा। आप लोगों पक्षी देखे हैं, चातक पक्षी सुने हैं, देखे नहीं हैं। चातक पक्षी का एक गुण है कि वो स्वाति नक्षत्र के जल ग्रहण करने के लिए वो ललायित रहता है। समुद्र में बहुत पानी है, नदियों में, तालाब में बहुत पानी है, लेकिन उस जल को छूता तक नहीं है। वह वही जल ग्रहण करता है जो स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होता है वर्षा का, वो भी नीचे का नहीं, वर्षा का जो ऊपर से गिरता है उसका, नीचे से नहीं होता है, तो वो कहलाता है चातक पक्षी पपी है। तो चातक प्रकार के पक्षी होते हैं, श्रोता होते हैं, वे लोग कृष्ण विषयक वार्ता का श्रवण करने का व्रत ले लेते हैं और कुछ नहीं। और जैसे वर्षा का पानी ऊपर से गिरता है तब वो ग्रहण करते हैं, नीचे से उठाते नहीं है, वैसे ही ये चातक जो होता है वो च्युतम हरि कथामृतम। च्युतम मतलब बरस रहा है, चू रहा है, गिर रहा है। हरि कथामृतम, जो हरि कथा गिर रही है वक्ता के मुखारविंद से, उसको ही वो ग्रहण करता है। तो यह है पपीहा प्रकार का। बहुत से बात संसार में है लेकिन सब कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनता है, लेकिन हरि कथा नहीं सुनते हुए भी वो सुनता है। यह है चातक प्रकार के जो श्रोता होते हैं, यानी एकांतिक भाव से सुनने वाला। जो एकांतिक भाव एक ऐसा भाव है जिस भाव में अन्य वस्तुओं का अभाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं बाजार में, सुपरमार्केट में, कहीं पर भी, और कोई बता दिया कि ये वस्तु यहां पर मिलेगा। रास्ते में बहुत से दुकान आते हैं, बिलबोर्ड आता है, विभिन्न प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आता है, सब आता है, लेकिन हमारा मन उन वस्तुओं पर नहीं लगाता है। कहाँ लगाता है? जो वस्तु हमें चाहिए। यह एकांतिक भाव। तो एकांतिक भाव से जो श्रवण करता है वह कहलाता है चातक प्रकार का श्रोता, जिसका मन मनसा, मन से, वाणी से और काया से, शरीर से, सब प्रकार से, जो मानसिक, कायिक और वाचिक सब प्रकार से हरि कथा में जो लगा रहता है वह है पपीहा या चातक। दूसरे जो श्रोता हैं वे कहलाते हैं हंस। हंस का गुण है कि नीर और क्षीर से वो क्षीर को ग्रहण करेगा और नीर को छोड़ देगा। तो कभी कभी हम कथा सुनने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग कथा कहते हैं, जो हंस प्रकार के होते हैं वो कृष्ण विषयक जो बात है उसको ग्रहण कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं चाणक्य पंडित का कोट कर करके कि सोना यदि कीचड़ में भी होता है तो जो सोनार होता है वो उठा करके उसको धो करके अपने पास रख लेता है, इतना कीचड़ में से छूट नहीं लूंगा। तो जो हंस प्रकार का श्रोता होता है किसी प्रकार से अवसर मिल जाए, जैसे इस्कान के सब डिवोटी हंस हैं, सही में हंस हैं, कोई इनवाइट कर दिया कि हमारे यहाँ कथा होने वाली है आप आइएगा, अब दोस्ती है, संबंध अपना है, अब यह कह देना, नहीं भाई हम तो वो सब कथा नहीं सुनते हैं, केवल शुद्ध भक्तों का ही कथा सुनेंगे, आपके पता नहीं महाराज कौन है, हम जानते नहीं है, वहां दुर्गा जी का होगा, काली जी होगा, नहीं कहते क्या रामायण का पाठ होने वाला है, अखंड रामायण का कथा, रामायण कथा हो रही है, तो आप आइएगा। अब संबंध को रखते हुए हम लोग जाते हैं, जाना पड़ता है, संबंध को निभाने के लिए जाना पड़ता है। अब बैठे हुए कथा हो रही है, तो जो हंस प्रकार कथा सोता होता है वो सुनता है, और कभी कभी ये लोग भी अच्छा बोलते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं, तो जो अच्छा चीज होता है उसको ग्रहण कर लेता है और सब छोड़ देता है, ए हंस। तीसरा है सुख, सुख मतलब तोता। आप लोग तोता का गुण जानते हैं कि तोता जो आप पढ़ा दोगे वही पढ़ेगा, उसका मतलब वो नहीं जानता है। हम लोग छोटे थे तो एक हमारे पंडित जी थे, वो हमेशा संस्कृत के पंडित थे, और हमेशा एक ही बात कहते थे, और हमें कुछ कुछ बातें स्कूल की याद आती हैं, और बड़ा अच्छा तरह से कहते थे कि देखो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रट कर तुम लोग याद मत करो। कहते हैं रटंत विद्या अमंत नहीं, चपंत भोजनम पचंत नहीं। कहते हैं रटा हुआ जो विद्या है वो नहीं आएगा, और दबा कर खा लोगे, चपंत भोजनम पचंत नहीं, दबा कर खा लोगे तो पचेगा नहीं, तो रट कर मत याद करो, सुनो समझो, तोता बनकर के मत रिपीट करो, मैं वो नहीं चाहता हूं। और इस संबंध में कहानी कहते थे कि एक बार गुरुजी थे, उनके पास कुछ तोते थे, और तोतों को गुरुजी पढ़ाते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। सब तोते याद कर लिए थे। एक दिन शिकारी आया, वो जाल बिछाया, दाना डाला, सब तोते फंस गए हैं और पढ़ रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। उन्हें मालूम नहीं कि शिकारी किसे कहते हैं, किस जानवर का नाम शिकारी, लोभ क्या है, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। तो एक वैसे श्रोता होते हैं तोता प्रकार के, वो सुन लेंगे जो बात, जाकर घर पर एजिटी रिपीट कर देंगे, उसका मतलब क्या है उनके जीवन में, बस रिपीट करते हैं, तो ये सुख है। और चौथे प्रकार के श्रोता हैं, वे क्या आते हैं, लेकिन हैं श्रेष्ठ, ये प्रवर प्रकार के श्रोता हैं, मीन भी सॉरी सुख भी, यानी सुन करके रिपीट करना, मतलब इसमें अटेंशन है, तब तो सुना, रिपीट किया याद कर करके। और चौथे प्रकार के प्रवर श्रोता हैं, वो है मीन, मीन मतलब मछली, मछली का एक पलक नहीं होता है, और जिसका पलक नहीं होगा उसे नींद नहीं आएगी। हम लोग सोते हैं, ये पलक है, इसलिए किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो सेविंग करा लो पूरा, इधर का सब कटवा लो, नींद नहीं आएगी। ये पलक, कहते ना पलक लग गया, कहते ना आंख लग गया, पलक लग गया, तो ये पलक जो है, इस पलक पर सूरदास एक भजन गाए हैं कि यशोदा मैया जब कृष्ण को सुला रही थी, कह रही थी कि हे पलक तुम लग जाओ ताकि मेरा लाला सो जाए, तो आउर निदरिया कहते हैं भजन है, कहे निद्रा देवी तुम, निद्रा देवी पहले पलक पर आती है, तो ये पलक जो है ये भ्रम, ए और नीचे का ये पलक मछलियों के पास से नहीं होता है, तो ये लोग कभी सोती नहीं है। तो अपलक दृष्टि से जो मछली होती है वे अपना भोजन क्षीर सागर से या कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण करती है, तो वैसे ही श्रोता जो मीन प्रकार का श्रोता है, अपलक दृष्टि से यानी एकाग्र भाव से हरि कथा को ग्रहण करता है, यह प्रवर प्रकार का श्रोता है। तो चार हुए, चातक, हंस, सुक और मीन, ये चार प्रकार के प्रवर श्रोता हुए। अब अवर प्रकार के, अधम प्रकार के जो श्रोता हैं वो कहलाते हैं ब्रिक, ब्रिक मतलब भेड़िया, भेड़िया अनायास ही गर्जना करते हैं, आवाज निकालते हैं। अब कहीं हरिण का झुंड है, कोई सुंदर सुरीले ढंग से बांसुरी बजा रहा है और हरिण लोग बेचारे सुन रहे हैं, और भेड़िया जाकर के जोर से आवाज करेगा, सब डिस्टर्ब कर दिया। वैसे ही कथा में देखा जाता है, जब कथा कही जाती है सब लोग बड़े आनंद से अटेंटिव होकर के एकाग्र भाव से कथा सुन रहे हैं, उसमें जो भेड़िया प्रकार के श्रोता होंगे उनको इतना अच्छा लगेगा, बीच में कहेंगे निताई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे, बीच में बोलना शुरू करेंगे, सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। हैं श्रोता ही बेचारे, लेकिन हैं वो भेड़िया प्रकार के श्रोता। ऐसा अनुभव है आप लोगों को? हैं बीच में आनंद आएगा तो खूब थोड़ा अपना दिखाएंगे स्पेशलिस्ट के, हाँ मैं मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ महाराज, हाँ महाराज, बहुत अच्छा, हाँ, वो बोलना शुरू करते हैं बीच में। एनीवे, उसके बाद आते हैं भुरुंड। भुरुंड ये जो पक्षी हैं वो हिमालय के तलहटी में पाई जाती है प्राय। ये लोग मिमिक्री करते हैं, जैसा आप बोलेंगे यथावत उसी शैली में उसी बात को वे लोग बोल देंगे। ये पक्षी हैं मिमिक्री करने वाली। तो वैसे ही एक भुरुंड प्रकार के श्रोता होते हैं जो सुनेंगे और उसी का मिमिक्री करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, कल मजाक के रूप में उसको लोगों से साथ में करें, वो तो ऐसे कह रहे थे, एक बात कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, ये बात यथावत जो कहते, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। और तीसरे प्रकार के अवर श्रोता हैं वो हैं ब्रिस। ब्रिस मतलब बैल। बैल को आप अंगूर और खली साथ में मिलाकर दे दो, खा जाएगा। खली तीखा होता है, अंगूर मीठा होता है। तो तीखा और मीठा साथ में मिला दो, उसको कोई भेद नहीं है कि मीठा है और यह तीखा है। तो वैसे ब्रिस प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो कोई भी कथा सुनने चले जाएंगे, दुर्गा जी का, काली जी का, कृष्ण का, सब सब मिला करके सुनेंगे, खिचड़ी बना लेते हैं वो लोग, उन्हें कोई भेद नहीं, सब कुछ कुछ भी सुनेंगे। ये ब्रिस प्रकार के हैं। और चौथे हैं वो कहलाते हैं उष्ण। उष्ण मतलब ऊंट, ऊंट प्रकार के श्रोता है। क्या भागवत में उदाहरण दिया गया है, ये ऊंट प्रकार के श्रोता हैं। एक ही जगह पर आम का पेड़ हो और वहीं बबूल का पेड़ हो, और आम के पेड़ में अल्फांसो मैंगो भी हो, चाहे लंगड़ा आम हो, बहुत सुंदर है आम, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, लेकिन वो आम नहीं खाएंगे, वो बबूल खाने जाएंगे। तो वैसे ही जब कथा का सुअवसर होता है तो एक जगह हरि कथा हो रही है और एक जगह पॉलिटिकल रैली हो रही है, तो हरि कथा सुनने नहीं आएंगे ऊंट प्रकार के जो श्रोता हैं, वे श्रोता हैं, कहाँ जाएंगे, वो पॉलिटिकल रैली सुनने जाएंगे, पॉलिटिक्स सुनने जाएंगे, कथा सुनने आएंगे। तो ये ऊंट प्रकार के श्रोता हैं। तो इस प्रकार से ये आठ प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया गया। अब थोड़ा 2 मिनट हम कीर्तन करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया और कोई व्यक्ति 1.5 घंटा से ज़्यादा सुन नहीं पाएगा, 45 मिनट मैक्स है, तो ज़्यादा हो गया, 2 मिनट केवल, उसके बाद फिर 9:30 तक है ना समय, कब तक है? तो चलिए तब कथा नहीं, तब कीर्तन नहीं करें, नहीं फिर 1 मिनट कर लेते हैं, 1 मिनट केवल, थोड़ा 10 मिनट और रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं पूरा ख़त्म करूंगा, ये चारों तीन पैर हो गया, ठीक है ना, एक भागवत का महात्म, भागवत का प्रयोजन, और श्रोता और वक्ता का गुण। तो अब तक से हमने वक्ता का, श्रोता का सुना, अब वक्ता का बाकी रह गया है, और उसके बाद भागवत का विषय वस्तु, तो कल सुबह विषय वस्तु कल लेकर के करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बस अमेरिका है, टाइम से रहना पड़ेगा ना। अब वक्ता के गुण, तो एक तीसरा का सेकेंड पार्ट है। प्रथम पार्ट है भागवत का महत्व, भागवत का प्रयोजन, श्रोता और वक्ता का गुण और भागवत का विषय वस्तु। तो एक गुण है श्रोता वक्ता का, कैसे व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन किससे सुने। भागवते कथा से नहीं, भागवत सुनेगी या भागवत स्थाने। भागवत कथा सुननी है तो हमें भागवत पुरुष से सुननी चाहिए। दो प्रकार का भागवत है, एक तो एक ग्रंथ भागवत और एक पुरुष भागवत। ग्रंथ भागवत तो ग्रंथ है, और पुरुष भागवत जो अपना जीवन भागवत के अनुसार आधार पर जीवन यापन करता है उसे भागवत कहते हैं। अब भागवत का अर्थ क्या होता है। भागवत, भा का मतलब होता है भासते अनेन इति च भा। विभिन्न प्रकार से टाइम प्लेस और सरकमस्टेंसेज के अनुसार जो लोगों से वार्ता कर सके भगवान के विषय में। भागवत का, भागवत पुरुष का एक गुण है, भागवत का भी, यानी भागवत सबके लिए, भागवत महापुराण भी सबके लिए है और जो भागवत का जो भागवत पुरुष है वो भी सबके लिए सुलभ है। प्रभुपा जी देखिए महान भागवत हैं। प्रभुपा जी के शरण में कौन कौन है। साइंसिस हो वो भी आया, और बिना अंगूठा छाप वाला हो वो भी आया, सब लोग आए प्रभुपा जी के शरण में हैं, सब प्रकार के लोग। तो भासते अनेन इति, जो सबको के जीवन में जो प्रकाश ला दे अपने आचरण के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, वह है भागवत। और ग मतलब गियते चैति, जो हमेशा कृष्ण का गुणगान करता रहता हो। जैसे नारद इत्यादि को कहा गया गियते नारदादि भी सनकादयश्च इति ग। नारद जी, सनकादि ऋषि, ये सब हमेशा गुणगान करते रहते हैं कृष्ण का। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम, सब जगह कथा कहते रहते हैं, तो गीयते गाते रहते हैं। और वह वर्तन्ते सर्वाणि शास्त्राणि इति च वह, सभी शास्त्रों में जिन भगवान का और जिन भक्तों का वर्णन किया गया है वह है वह। और तरन्ति इतरे जना अस्नात इति त, जिसके संग से संसार के लोग तर जाते हैं इस संसार से। भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ, इनके संग से। साधु संग सर्वशास्त्र कौ लव मात्र साधु संगी सर्वसिद्धि है, ये है भागवत। तो भागवत कथा सुननी है तो भागवत कथा नहीं, भागवत सुनेगी या भागवत स्थाने। तो प्रथम गुण है कि वो व्यक्ति को भागवत होना चाहिए, भागवतमय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शौनकादि ऋषियों ने जब सुत गोस्वामी से मिले तो उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्याधान अपिधेतानि धर्मशस्त्राणि यान्वितः यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूतः परावर विदो विदुः वेत्थं त्वं सौमितः सर्वं तत्त्वस्तद अनुग्रहात् ब्रूहिस्तिग्नस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपिता, त्वया खलु पुराणानि। खलु मतलब निस्संदेह, त्वया मतलब आप, हे सुत गोस्वामी आप निस्संदेह समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। पुराणानि स इतिहासानि च, वेद पुराण इतिहास यानी रामायण महाभारत, और च मतलब लौकिक ज्ञान भी। कभी कभी प्रवचन में हम लोग कुछ बोलते हैं शिक्षा प्रद, तो वह शिक्षा प्रद कथाएं ऐसी बात नहीं है कि सब के सब शास्त्र से ही है। च मतलब लौकिक भी, क्योंकि शिक्षा प्रद होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो भी उदाहरण दिए हैं, गौड़िया मठ में एक पुस्तक निकाला गया उपदेशेर उपाख्यान, उपदेश के द्वारा उपाख्यान के द्वारा उपदेश दिए। जैसे उन्होंने एक कथा कहा था, यस नो वेरी गुड, आप लोग जानते हैं कथा है यस नो वेरी गुड का, है कि कैसे ब्रिटिश राज में एक गांव था, उसमें एक लड़का था, वो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ करके आया था, लेकिन वो पढ़ा था केवल 3 वर्ड, यस नो वेरी गुड। एक बार गांव वाले मिल करके किसी का मर्डर कर दिए, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को देखकर सब गांव वाले डर गए, सब अपने अपने घर जाकर के छिप रहे थे। तो ये लड़का बाहर आया, आका यस नो वेरी गुड, तो पुलिस वाले समझे कि ये साहब का आदमी है, अंग्रेजियों का आदमी है, अंग्रेजी बोल रहा है, और चले गए छोड़ करके। केस लिखा गया, जब हियरिंग के लिए आया तो जज बुलाया, जज ने पूछा कि हैव यू मर्डर्ड, ही सेड यस, वाज देयर नो यू हैव एनी विटनेस और एनीथिंग टू से अबाउट दिस, ही सेड नो, तो जज सेड ओके यू विल बी हैंग, ही सेड वेरी गुड। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी यस नो वेरी गुड कथा कहे। अब किस पुराण में है ये कथा, किस वेद में है, किस रामायण में है, कहीं नहीं है, लेकिन ये लौकिक शिक्षा है, यह बतलाने के लिए कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा थोड़ा ज्ञान खतरा कर सकता है। तो वैसे ही ये चोर वाला मैं कथा बताया, कहां पर किस शास्त्र में है, ये लौकिक कथा है लेकिन एक काम का है, इसे शिक्षा मिलती है। बात सही है कि थोड़ा सुनने से भी वो उसकी जेल से मुक्ति हो गई, यदि पूरा जीवन कथा सुनेंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो कदें उसे च, आप वेद पुराण को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, च अनघ, अनघ मतलब पाप रहित। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कम से कम मिनिमम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जो कथा जो आसन पर बैठता है कम से कम 4 नियम पालन करने वाला होना चाहिए, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज। तो च अनघ, और आख्यातान अपिधीतानि धर्म शस्त्राणि आनीता, और आप विभिन्न प्रकार से इन कथाओं को आपने कहा है, सुना भी है और कहा भी है, यानी वेद विद्वान श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुने सुत, आप भगवान व्यास देव से दीक्षा ग्रहण किए हैं और अन्य मुनियों से भी इसको सुने हैं और समझे हैं। तो कथा जो कहने वाला है वो शिष्य परंपरा में होना चाहिए, वह सुना हो, समझा हो और पचा भी लिया हो। केवल सुन करके और रिपीट करने से उसे फायदा नहीं होगा, सुनना समझना और अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट करना, तब उसमें जो वक्ता होता है उसको स्वयं आनंद आता है बोलने में, और जब वक्ता को आनंद आएगा तब दूसरे को आनंद दे सकता है। इसीलिए भागवतम में वर्णन किया गया, जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे और परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे, तो उन लोगों के कथा प्रवाह में वहां पर पड़ेंगे कि वो गिर रहा था, च्युतम हरि कथा अमृतम, च्युतम गिर रहा था, और उसमें कोई क्रम नहीं था, कभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो गिर रहा था और परीक्षित महाराज उसको ग्रहण कर रहे थे, चुतम चू रहा था, पक गया था। यानी कौन फल गिरता है जो पक जाता है, जो कच्चा फल होता है तो तोड़ना पड़ता है, कोई फल पक गया तो गिरता है। यानी जो वक्ता है वह पूर्णतया गीता भागवत को सुन करके रचा पचा लिया है, और कब कहाँ का बात बोलना चाहिए, कहाँ से लेकर के आना, सब कुछ अपने आप जो आता है, तब वक्ता और श्रोता के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो बहुत जरूरी है कि वक्ता जो है वह ऑडियंस से संबंध स्थापित कर सके। संबंध स्थापित करने के कई एक तरीके हैं। एक तो कि सब पर दृष्टि रखे, थोड़ा नजर घुमाते रहे, सब लोग को देखते रहे। दूसरा, संबंध स्थापन का जो विषय वस्तु है वो क्लियर होना चाहिए, तब संबंध स्थापित होगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप सुने हैं अन्य च मुनय हसुता परावर विदो विदु, बहुत लोगों से सुने हैं, गुरु परंपरा में आप हैं, और सबसे जो वक्ता है उसका सबसे महान गुण है, कहते तद अनुग्रहा है, वह अपने गुरु का अनुग्रह का पात्र हो, अपने गुरु का आशीर्वाद उस पर हो। और दूसरा, जिन लोगों को कथा कह रहा है उनके प्रति उसकी भावना जो है, ये अनुग्रह शब्द दोनों के लिए है। अनुग्रह जो है ऊपर से उसके ऊपर अनुग्रह हो अपने गुरु का, और वह दूसरों पर अनुग्रह करे, यानी दूसरों के कल्याण के लिए कथा कहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पद्म पुराण वर्णन किया गया है, भगवत मति अनपेक्ष सुहृदो दीनेशु सानुकंपय बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। भगवत मति, तो इन क्वालिफिकेशन के अलावा एक तो लिख लीजिए कि निसंदेह ही कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड की चार नियम पालन करें, पाप से परे हो, शास्त्रों का उसे सम्यक ज्ञान हो, वह इस कथा को सुना है और कहता हो, सुन करके कहता हो, गुरु परंपरा में हो, और अपने गुरु का अनुग्रह हो, वैष्णव का अनुग्रह हो, और दूसरों पर अनुग्रह बरसाए। कहते हैं भगवत मति यानी कृष्ण भक्त, भगवत मति जिसका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे, 24 आवर ए डे कृष्ण भावना भावित हो, भगवत मति अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कथा में कि हमको लोग प्रणाम करेंगे, हमको लोग दक्षिणा देंगे, हमको लोग हमारा चेला बन जाएंगे, इस ये अपेक्षा ना हो, अनपेक्षा, क्योंकि हमारा संबंध जुड़ाना है भगवान से। यदि कोई वस्तु बीच में आ जाएगा, अपेक्षा आ जाएगा, तो संबंध नहीं जुड़ेगा। अपेक्षा ना हो कथा कथा कहने में, जो कथा कहता है वक्ता उसमें कोई अपेक्षा ना हो, डिजायरलेस हो, बस एक ही अपेक्षा है कि जीव का भगवान से संबंध स्थापित हो सके। सुहृदो दिनेशु सानुकंपयो, उस सुहृदो दिनेशु जो ब्रेफ्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस लोग हैं, जिनके पास भगवत भावना नहीं है, उन लोगों के प्रति उसमें हृदय में दया होनी चाहिए, सुहृद। और सा अनुकंपयो, और अनुकंपा के साथ में हरि कथा को सुनाता हो, बहुधा बोधना चतुरो, वो प्रैक्टिकल हो कथा कहने वाला। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई PhD किया है, MTech किया, BA किया, BSc किया, ये छोटा बच्चा उसका बेटा है, यदि BSc और MTech का कोर्स पढ़ाएगा बच्चा, का बच्चा कहाँ समझेगा, उसको उस बच्चा के स्तर पर आना पड़ेगा, ए मतलब एप्पल, बी मतलब बुक, सी मतलब कैट, ये बताना पड़ेगा, तब बच्चा समझेगा। तो वैसे ही वक्ता वह है जो कि श्रोता के स्तर पर आकर के और उनको समझने जो बात वही कहना है, लेकिन ऐसा बात कहे कि लोग समझ जाए। जिस प्रकार से जो माँ होती है बच्चे को दवा देती है, दवा कटु होता है, माँ का लक्ष्य है बच्चे को दवा देना, लेकिन थोड़ा उसमें हनी मिला देती है तो बच्चा ले लेता है। तो वैसे ही वक्ता को बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट जो एक्सपर्टनेस है ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट तभी हो सकता है जब वह कृष्ण भावना भावित हो, तब कृष्ण भावना भावित, क्योंकि कृष्ण भावना ही लोगों को जो संबंध स्थापित करना वो कृष्ण संबंध स्थापित करते हैं। मैं या कोई व्यक्ति जो कथा कहता है वो श्रोता से संबंध स्थापित कभी नहीं कर सकता है, कृष्ण ही है जो कि संबंध स्थापित करा सकते हैं कि दोनों के दिल में कृष्ण है, एक कृष्ण के विषय में कहता है और एक कृष्ण के विषय में सुनता है। यदि वक्ता कृष्ण भावना भावित हो तब वह एक्सपर्टली वही बात कहेगा जो कि लोगों के दिल में उतर जाए, दिल और दिमाग में उतर जाए। तो बहुधा बोधनो चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि भी, और जिसका सम्मान सब लोग करते हैं, यहां तक कि साधु समाज भी जिनका सम्मान करता है, यानी जो सम्मानित व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति से सम्मानित व्यक्ति एक एक बात लोगों के दिल में उतरता है जिसका सम्मान होता है, यहां तक कि आर्टिफिशियली सम्मानित व्यक्ति भी। उदाहरण के लिए हम सब लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह उतने एक्सपर्ट नहीं है बोलने में उनका भाषण, लेकिन है प्राइम मिनिस्टर, जब बोलते हैं तो लोग अटेंटिवली सुनते हैं। और एक एक बात भी, सोनिया गांधी उल्टा बोलती है, वो हिंदी बोल भी नहीं चाहती है, लेकिन सम्मान है तो लोग सम्मान से एक एक बात जो है। चाहे प्रमुख स्वामी ये प्रवचन नहीं करते हैं लेकिन दो चार बात बोल देंगे, सम्मान है। तो सम्मानितो मुनि भी, जिसका सम्मान सब लोग करते हो। तो कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं डिमांड रिस्पेक्ट एंड कमांड रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट कमांड करता हो, वक्ता का एक एक गुण है जो रिस्पेक्ट कमांड करता हो, और वह आता है उसके भक्ति से। तो सब मिलाकर कृष्णमती जो कृष्ण का भक्त है। तो संक्षिप्त में बता दिया आप लोगों को, क्योंकि समय को देखते हुए करना था, तो इस प्रकार से यहीं पर आज की कथा का हम समापन करेंगे। और टाइमिंग क्या 7:15 बजे कि 7 बजे? हाँ 2 घंटा होना चाहिए, जब आए हैं इतना दूर से कम 2 घंटा हो। तो आप लोग भी टाइम से आए, आप सब अमेरिका में हैं तो मैं तो टाइम से आ जाऊंगा, ऊपर से नीचे आना है कोई दूर नहीं है, लेकिन आप लोग टाइम से आ जाएंगे तो अच्छा होगा, 7 से 9। क्योंकि बेसिकली क्या रहेगा कथा में कि आधा घंटा कीर्तन में जाएगा, क्योंकि कीर्तन भागवत का मूल है। पूरा भागवत कथा सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि जहां पर भागवत कीर्तन, ये अंतिम श्लोक है कि सर्व पाप प्रणाश इदम, जहां कीर्तन होता है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है, यही भागवत का अंतिम लक्ष्य है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन जस्य, यहाँ पर नाम संकीर्तन होता है। तो और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर। मैं प्राय अपने कथाओं में क्या करता हूँ कि कथा यदि आपने जो सुना उसमें कुछ बातें समझ में न आए तो आप लिख करके ऑर्गेनाइजर के हाथ में दे दीजिए, नेक्स्ट डे कथा करने से पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ। तो 15 मिनट क्वेश्चन आंसर, 15 मिनट कीर्तन, इस प्रकार से आधा घंटा हो गया, और 45 मिनट और 45 मिनट, 1.5 घंटा कथा। 45 मिनट से ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं, हमारा हमको भी पैर ऊपर करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा है? तो 45 मिनट कथा और आधा घंटा कीर्तन और आरती। चलिए आरती कर ले भागवत जी का, सब लोग खड़ा हो जाएं, अब भागवत जी की आरती होगी। ये ये करा देना चाहिए, जीरोक्स करा देना चाहिए, आरती वाला पेपर मेरे पास 2-3 है, आपको दे दीजिए, हाँ मैं गा लूंगा। आप आरती करेंगे? आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कली मल मथनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमह सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकासिने, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिने, रसिक हृदय रस रास विलासिने, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रंध्रा श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।